क्यों भगवान को प्राप्त करना है और कैसे करना है और भगवान कौन है। जब तक ये तीन प्रश्न स्पष्ट नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सो हमारा पूरा जो संदेश है वो भगवद गीता पे आधारित है। क्यों? क्योंकि शास्त्र योनितवत भगवान को केवल शास्त्रों से जाना जाता है। जिस प्रकार हमें अपने पिता के बारे में माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता है, उसी प्रकार शास्त्र बताते हैं कि भगवान कौन है। बिना शास्त्र ज्ञान के भगवान को कोई नहीं जान सकता, यह संभव है। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र को छोड़कर केवल अपने मन से कुछ कल्पना करके पूजा करता है, उसकी पूजा न सफल होती है, न उसको शांति मिलता है, न सुख मिलता है। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं मगर हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि अगर आप खिचड़ी बनाना चाहते हो और उसमें चावल और चीनी डालोगे और पानी नहीं डालोगे तो खिचड़ी नहीं बनेगी। हो चावल दाल और पानी का सही सही मात्रा में अपमान होना चाहिए, प्रपोर्शन सही होना चाहिए उन तीनों का। उसी प्रकार ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और वो कहां से मिलेगा? वो शास्त्रों से मिलेगा। इसलिए भक्ति केवल एक भावना नहीं है। भावना है मगर उस भावना का आधार शास्त्र ज्ञान है। क्योंकि बिना शास्त्र ज्ञान के वो भावना खोखली है, बिना शास्त्र ज्ञान के वो भावना अंधविश्वास है, बिना शास्त्र ज्ञान के वो भावना भावुकता है। इसलिए इस समाज में लोगों को श्रद्धा तो है मगर दुर्भाग्यवश उस श्रद्धा का अंत भगवान के चरणों में नहीं होता। उस श्रद्धा का अंत लोगों के व्यवसाय, लोगों की दुकानों में, लोगों के निजी जीवन में अंत हो जाता है। बस वो श्रद्धा उनकी जो है वो पैसे में, धन की इच्छा और इस संसार की भौतिक इच्छाओं में दबके हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। इसीलिए शास्त्र आधार होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान कहां से मिलेगा? वो मिलेगा साधुओं से। अगर हम साधु संग नहीं करेंगे तो हमें शास्त्र ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। आप लोग जो सुनने आए हैं यहां पर, आपका सौभाग्य है कि आप सुन रहे हैं। जो लोग अपनी दुकानों में बैठे हैं उनका दुर्भाग्य है कि उनके यहां पर हम यहीं पे प्रोग्राम कर रहे हैं मार्केट में और लोग फिर भी सुनने नहीं आ रहे। वेल, हमने सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है मगर ये कभी नहीं सुना था कि कुआं प्यासे के पास आता है। मगर अब तो ऐसा भी देख लिया कि अगर कुआं प्यासे के पास आ भी जाए तब भी वो कुएं से पानी नहीं पिएगा। सो नराधमा, कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो साधु संघ का फायदा नहीं उठाते और उनसे शास्त्र ज्ञान नहीं लेते वो लोग दुर्भाग्य है उनका। वो नराधम है, नरों में अधम है। सो शास्त्र क्या है? सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि शास्त्र, हर किताब को शास्त्र नहीं कहते। कोई भी किताब लिख दे उसको शास्त्र नहीं कहा जाता। आजकल मार्केट में आपको करोड़ों किताब मिलेंगी, मिस्टर गुरुदेव, सॉरी मिस्टर गुरुदेव कह रहा हूं, व्हाटएवर, कितने सारे परमहंस, 1008, 108, 1100008, अब ऐसे भी आ गए हैं, इतने सारे गुरु हो गए हैं। सबने अपने अपनी किताबें लिखी हैं, हर संस्था की अपनी किताब है मगर हर किताब को शास्त्र नहीं कहा जाता। जिस प्रकार हर किताब को स्कूल की किताब नहीं बोलते, कोर्स की किताब अलग होती है, कुंजियां अलग होती हैं, कुंजी पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता, हमें अपनी स्कूल की सीबीएसई की किताब पढ़नी पड़ेगी, उसी प्रकार शास्त्र हमारी किताब है। जो लोग लिख रहे हैं वो कुंजियां हैं, वो पढ़ के आप नहीं समझ पाओगे, समझोगे भी तो उसमें संशय रहेंगे, अश्रद्धा होगी और अंततः अज्ञान हो जाएगा। तो शास्त्र किसे कहते हैं, स्कंद पुराण का श्लोक है रेवा खंड में कि वेदे च रामायणे च चार वेद ऋग साम यजुर अथर्व। वाल्मीकि रामायण महाभारते तथा महाभारत पंचरात्र, पंचरात्र मतलब वो किताब है जिसमें भगवान की पूजा करना सिखाया होता है, किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है उसके भी कुछ विधि विधान होते हैं, उसको सीखना पड़ता है। पंचरात्र इतिहास, इतिहास मतलब पंचरात्र पुराण, ए 18 पुराण। इति शास्त्र अभिधीयते, इनको हम शास्त्र बोलते हैं। चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, इसके अन्यथा कोई भी किताब वो शास्त्र नहीं है, वो मनोकल्पना है। जो किताबें इन इन शास्त्रों के आधार पर लिखी जाती है उनको भी हम शास्त्र कहते हैं, अन्यथा अपने मन से बस लिख रहा है वो व्यक्ति। इसलिए कभी भी कोई भी किताब पढ़े तो पहले देखें कि वो शास्त्र है या नहीं। मगर प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि हमें काम भी करना है। कलयुग में बहुत झंझट है, मंद सुमंद मत्यो मंद भागे उपद्रित, हमारी बुद्धि कम है और समय कम है, भाग्य इतनी प्रॉब्लम्स में जकड़े हुए हम लोग, क्या करें। वेद कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं आती। उपनिषद कैसे पढ़ेंगे, विवेक कम है। पुराणों की चर्चा कैसे करेंगे, समय बहुत चाहिए। और पंचरात्र विधि, भगवान की पूजा करना कैसे सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह, स्वच्छ स्थान और धन नहीं है कि हम भगवान की पूजा बहुत जोर शोर से कर पाए, वो नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े यज्ञ, हर एक के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने 5000 साल पूर्व गीता बोली और अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये आप जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं चौथे अध्याय में, ये आपने पहले कभी किसी को दिया था। कृष्ण ने बोला हां अर्जुन, ये ज्ञान एवं विवस्वतः योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था और सूर्यदेव ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और फिर उस तरह उन्होंने अपने पुत्रों को, राजाओं को दिया और इस तरह से गाने परंपरा से चलता आ रहा। और आज मैं तुम्हें वही ज्ञान दोबारा बता रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा, वही चीज दोबारा बता रहा हूं। तो अर्जुन ने पूछा वही क्यों बता रहे हो दोबारा, वो सब वेदों में है ही, हम पढ़ लेंगे। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, वेद मैंने बनाया, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मैं वेदों को जानता हूं, वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, वेद भगवान की रचना है, कृष्ण की रचना। जो लोग कहते हैं कि वेद वेदव्यास जी ने लिखे हैं वो गलत है, क्योंकि वेदव्यास जी ने वेद नहीं लिखे, वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किया है, वेद पहले से ही थे। कृष्णा कह रहे हैं मैंने लिखे हैं वेद, मैं जानने वाला हूं वेदों को, वो तो वेद व्यास जी ने कलयुग के शुरुआत में उन वेदों को जो लुप्त होने वाले थे उनको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया बस, और चार भाग में विभाजित कर दिया, ऋग साम यजुर अथर्व, कि जिससे हम उसको अच्छी तरह पढ़ पाए। धर्म शास्त्र भगवान के हृदय से प्रकट होता है, धर्म शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान का ज्ञान है। अपौरुषीय है, किसी पुरुष किसी मानव की रचना नहीं है वेद और शास्त्र, यह हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विज्ञान मानव की रचना है, इसलिए उसमें त्रुटि है। आज कोई थ्योरी आती है, कल कोई और थ्योरी आ जाती है, तो थ्योरी चेंज होती रहती है। सो जब मैं अपने हॉस्पिटल में काम करता था, डॉक्टर था, तो उस टाइम कहते थे कि बुखार हटाने के लिए एक दवाई आई थी निमोसुलिड, आपको पता होगा निमोलिड होती है, पैरासिटामोल का दूसरा कंपाउंड है निमोलिड, तो वो खाके बुखार हट जाता है। मगर अब रिसर्च आई है 10 साल बाद कि अगर वो दवाई खाओगे तो आपका लिवर फेलियर हो जाएगा। विज्ञान बदल गया। पहले 10 साल पहले हमारे मेडिकल साइंस में ये था कि आप ईस्ट्रोजन हार्मोन लो, एक हार्मोन होता है, वो लोगे तो स्त्रियों के लिए अच्छा है। अब आजकल बोलते हैं कि अगर ये लोगे तो बीमार हो जाओगे। आपको पता है वो कान साफ करने के लिए वो आते हैं बड, कान साफ करने के लिए वो एक ईयरबड आते हैं, तो पहले बोलते थे कि उससे कान साफ करो, इतने ऐड आते थे जॉनसन के ईयरबड। तो हमारी दादियों ने सिखाया था कि कान कैसे साफ करते हैं, वो टॉवल को उस पर गीला करके उसको कान में रख के निकाल लो। तो पहले सारे डॉक्टर कहते थे देखो बहुत बुरा है इसे टॉवल से करना, वो ईयरबड इस्तेमाल करो। मगर अब थ्योरी चेंज हो गई, अब डॉक्टर खुद कहते हैं कि वो ईयरबड कभी इस्तेमाल करना मत करना, क्योंकि उससे कान खराब हो जाएगा। और कैसे कान साफ करने, वो टॉवल के आगे करके उससे कान साफ करो, जो पहले हमें अपनी दादी सिखाती थी। सो ये विज्ञान बदलता रहता है, मगर भगवान का ज्ञान कभी नहीं बदलेगा। वेद वो ही थे करोड़ों साल पहले, और जब व्यास देव जी ने संकलन किया तब भी वही थे, जब भगवान कृष्ण ने गीता बोली तब भी वही थे। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि गीता और वेद तो पुरानी बातें हो गई, अब जमाना बदल गया है। जमाना कुछ नहीं बदला है, हम बदल गए, हम शैतान हो गए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए हम पालन नहीं कर पा रहे शास्त्र, या हो सकता हम करना नहीं चाहते, इसलिए बहाना कर रहे हैं कि शास्त्र तो पुरानी बातें हैं, कौन पढ़ेगा कौन पालन करेगा। तो वेदों का जो ज्ञान है उसको कृष्ण भगवान ने गीता के रूप में बोला। क्यों? क्योंकि अगर आप वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे अपने आप, तो उसमें से धर्म निकालने के बजाय अधर्म निकालेंगे। क्योंकि वेद बहुत विशाल है, और एक कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में दिया है कर्म करो फल की चिंता मत करो, गीता में दिया है, यह आधा अधूरा ज्ञान है, गीता में नहीं दिया, ये गलत है बिल्कुल। लोग कहते हैं कि गीता में कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो युद्ध करो, मगर युद्ध करने के लिए भगवान ने गीता नहीं बोली थी, ये भी आधा अधूरा ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बोल दिया था, अर्जुन ये युद्ध तुम करोगे या नहीं करोगे, युद्ध तो होगा और सब मरेंगे, मगर मैं तुम्हें गीता इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम्हें युद्ध कराने के लिए, तुम युद्ध जीतो या हारो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर तुम अपने जीवन में हार जाओगे, तुम अगर जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझोगे तो युद्ध जीतते हुए भी हार जाओगे, सब फेलियर है। अगर आपके जीवन में एक जीरो हो, दो जीरो हो, तीन जीरो हो, तो कोई मूल्य नहीं है अगर उससे पहले एक नहीं लगाओ, एक के बाद जीरो लगाएंगे तो वो दस होगा, उसके बाद एक और जीरो लगाएंगे तो वो सौ होगा, फिर एक और जीरो लगाएंगे तो हजार, मगर एक नहीं होगा तो वो सब बेकार है। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में कमाए धन, अपना घर बार चलाएंगे, अपना जॉब करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, मगर कृष्ण नहीं है हमारे जीवन में, भगवान नहीं है, गीता नहीं है, तो सब बेकार है, आपका जीवन बेकार है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी पहले वही कर रहा था। तो मैं जब दिल्ली में था डॉक्टर, तो हमारा भी हॉस्पिटल था, ज्यादा कमाते थे उस टाइम, मगर संतुष्टि नहीं थी, शांति नहीं थी और सुख नहीं है। जो पैसे आपने कमाए, जो शादी आपने की, जो बच्चे किए, जो चीजें लाए, वो सब इस आशा में लाए थे कि सुख मिलेगा, मगर सब कुछ आ गया मगर एक चीज नहीं मिली, सुख। तो उसका फायदा ही क्या हुआ? अब वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने भगवान को नहीं समझा, या भगवान के बारे में अगर कुछ जानने का प्रयास भी किया तो वो अंधश्रद्धा से किया, गीता नहीं पढ़ी हमने। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता बोली ये समझ के कि वेद अगर ये लोग पढ़ेंगे तो इतने विशाल है, उसमें आधा अधूरा ज्ञान लेके कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा निकालेंगे। एक व्यक्ति मुझसे ट्रेन में मिला था, एक माता जी, तो मैंने पूछा आपने गीता पढ़ी है? कहते हाँ। कहती है, वो कह रही थी मैं संस्कृत स्कॉलर हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो उसने, मैंने कहा क्या समझा गीता में? तो उन्होंने कहा देखो मैंने समझा गीता में कि गीता में लिखा है कि शिवजी भगवान है। ये कहां है गीता में? मैंने कहा कौन सा श्लोक है? कहते नहीं बस है। आप देख रहे हैं लोग कितने अंधे और कितने बेवकूफ हो गए हैं। गीता में कहीं नहीं लिखा कि शिवजी भगवान है, एक भी श्लोक नहीं है। शिवजी सबसे बड़े वैष्णव है ये जरूर लिखा है। शिव, शंभु, महादेव, आशुतोष, महान वैष्णव है शिवजी। शिवजी पार्वती को कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजम उद्धृत्य उच्यते, कि मैं सत्य बोल रहा हूं पार्वती, सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, हाथ उठा के बोल रहा हूं। हाथ उठाना मतलब कि कन्फर्म है। क्या बोल रहा हूं? कि वेद शास्त्र परम न अस्ति, वेद शास्त्रों से ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान भी उसके पीछे बेकार है। और केशवात देवम परम, और केशव से ऊपर कुछ नहीं है, कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है, ये शिवजी कह रहे हैं, शिवजी स्वयं कह रहे हैं। शिवजी उसके बाद कह रहे हैं राम राम रामेति मनो रामे रमो रमे, कि हे पार्वती मैं सुबह सुबह प्रातः काल में उठते ही राम 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 ये बोलता हूं और मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है, शिवजी कह रहे हैं। तो गीता में तो लिखा है कृष्ण भगवान है, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, अर्जुन मत्तः परतरम मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, किंचित मतलब होता कुछ भी नहीं है, नान्यत् मैं उसी तरह इस संसार में विद्यमान हूं जिस तरह एक धागे में एक मोतियां धागे में पिरोई जाती है, तो धागा दिखाई नहीं देता, मोतियां दिखाई देती है। उसी प्रकार संसार का आधार भगवान है मगर भगवान दिखाई नहीं देते। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो दिखाई दे नहीं दिखाई दे वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो हमें अपना मन दिखाई नहीं देता मगर मन होता है, हमें दर्द दिखाई नहीं देता मगर दर्द भी होता है, हमें टीवी की तरंगे दिखाई नहीं देती मगर वो भी होती है, हमें वायु दिखाई नहीं देती मगर वो भी है, हमें अपना पेट दिखाई नहीं देता, देखा है किसी ने पेट अपना अंदर, मगर वो भी है। उसी प्रकार भगवान है मगर दिखाई नहीं देते, मगर जो बुद्धिमान है वो भगवान को देख सकते हैं। जिस प्रकार एक मैकेनिक एक कार को देख के बता सकता है कि उसके अंदर क्या खराबी है, आपको नहीं पता लगेगा, सिर्फ वो देख के बता देगा। जिस प्रकार एक डॉक्टर पेशेंट को देख के बता देगा कि उसके शरीर के अंदर क्या खराब है, बिना एक्सरे लिए, बिना अल्ट्रासाउंड किए, बिना सीटी स्कैन किए। पीछे सीटी स्कैन की दुकान है ना, तो सीटी स्कैन की जरूरत नहीं, हम देख के बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मगर उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार को देख के बता देगा कि इसके पीछे, इसके अंदर भगवान है। एक मूर्ख को पता नहीं लगेगा। कृष्णा कह रहे मूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन मूर्ख नहीं समझ पाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति समझ पाएगा। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जिसने साधु संघ में गीता नहीं पढ़ी। बुद्धिमान कौन है? जिसने थोड़ा प्रयास करके, थोड़ी मेहनत करके गीता को पढ़ लिया। तो मैं समझा रहा था कि अगर गीता को नहीं पढ़ेंगे और अब गीता प्रेस की किताबें खरीद खरीद के अपने घर में भर भी लेंगे, इधर उधर के 40 गुटका पढ़ते रहेंगे, शिव 40, हनुमान 40, राधा 40, गोपाल 40, गलत नहीं है पढ़ना, मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर गीता की आंखों से नहीं देखेंगे सब, तो आपको ज्ञान की जगह अज्ञान आ जाएगा, समझने आएंगे चीजें। इसलिए भगवान ने गीता बोली। गीता को समन्वय शास्त्र बोलते हैं। गीता या जस्ट आई स्टॉप, गीता समन्वय शास्त्र है। समन्वय शास्त्र मतलब गीता वो ज्ञान है जिसको पढ़ने से हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। एक विज्ञानम सर्व विज्ञानम, उस एक किताब को पढ़ने से आपको सारी किताबें समझ आ जाएंगी। बल्कि कृष्णा ये तक कह रहे हैं कि किम अन्य शास्त्र विस्तर है, स्वयं मुख पद्मनाभ से कृष्णा, गीता अगर भगवान ने स्वयं ने बोल दी तो किसी और शास्त्र की जरूरत ही क्या है, क्यों पढ़े हम सब कुछ, सबका सारी गीता में रख दिया भगवान ने। इसलिए गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म शब्द से शुरू हो रहा है गीता, इसमें सारे सार की चर्चा है। जो भी आपको कंफ्यूजन है सब गीता में, जो भी आपके मन में प्रश्न है सब गीता में। अर्जुन ने गीता में 23 या 28 प्रश्न पूछे, 23 प्रश्न पूछे, और उन 23 वो 23 प्रश्न वही है जो आपके मन में है सब, कि भगवान कौन है, भक्ति कैसे करनी है, क्यों करनी है, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, सब कुछ है गीता में। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्जुन ने सब कुछ पूछ लिया। हमारे लिए सारे क्वेश्चन पूछे थे और भगवान ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो गीता किताब नहीं है कि आपको घंटी बजाना सिखाएंगे सिर्फ, गीता वो किताब नहीं है, गीता विज्ञान है, सबसे परम विज्ञान है। बल्कि पाश्चात्य देश के लोग तो आजकल ये कहते हैं, पहले भी कहते थे, आइंस्टाइन और कई फिलोसोफर्स, दार्शनिक लोग, शोपेनर, व्हाइटफील्ड, वो सब कहते हैं कि गीता से ऊपर आज तक कोई सिद्धांत हुआ ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप गीता पढ़िए, गीता लेके गीता पढ़िए, आपके पास गीता होगी। मगर जो इस्कॉन की गीता है, गीता जो इस्कॉन की गीता है यथारूप, उसकी उस गीता को पढ़िए, क्योंकि उस गीता में, या हमारी जो गीता जो हम यहां पर बेच रहे हैं, उस गीता में श्लोक है, उसका मतलब है और उसकी व्याख्या है, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सारी चीजें उसके अंदर। बिना व्याख्या के आप गीता नहीं समझ पाओगे। तो वो पीछे मिल रही है गीता, आप लोग खरीद सकते हैं। वैसे भी इस महीने भगवान ने गीता बोली थी, तो इस महीने गीता खरीदना, किसी को गिफ्ट करना, न्यू ईयर आ रहा है तो आप न्यू ईयर पे किसी को गिफ्ट कीजिए गीता, आपके पास है तब भी खरीदो, क्योंकि उससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा, एक साड़ी, काजू किशमिश, वो बेकार की चीजें दे रहे थे, अच्छा गीता दो, उससे उसका परम कल्याण होगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसके घर वाले पढ़ लेंगे, घर वाले नहीं पढ़ेंगे तो उसके रिश्तेदार पढ़ लेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे तो उसका बेटा या उसका पोता पढ़ लेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा। और अगर उसको फायदा हुआ गीता पढ़ने से तो उसका 50% जो फायदा है वो आपको मिलेगा, क्योंकि गीता पढ़ने वाला, गीता देने वाला, गीता के बारे में बोलने वाला, गीता के बारे में सोचने वाला, सबको सेम बेनिफिट मिलता है। ये गीता की बात कर रहा हूं, भगवद गीता यथारूप। सो शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि जो रोज गीता का एक अध्याय पढ़ता है, या गीता का केवल एक श्लोक ही पढ़ता है, या आधा श्लोक पढ़ता है, या एक शब्द ही पढ़ता है, या गीता बस उठ के ये शब्द बोलता है, गीता बस भगवत गीता ये बोलता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गीता की बहुत महानता है। सारे आचार्यों ने गीता के बारे में चर्चा की है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, और इसलिए मैंने गीता पढ़, मैंने वेद पढ़े सारे, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, फिर गीता पढ़ी तो समझ आया कि गीता में वो सब कुछ है जो सारे वेदों में है, और वो भी है जो सारे वेदों में नहीं है। शुरू में शायद कठिन होगा मगर धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगी चीजें। तो गीता में ऐसा क्या दिया है? गीता में स्पष्ट है कि भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा है, यह समझना होता है। तो मैंने बताया तीन प्रश्न है हमारे सामने, भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त कैसे करें, और भगवान को प्राप्त करके क्या होगा। तो गीता में कृष्णा कह रहे हैं पहले तो हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कहां जाना है तो जाने का प्रयास क्यों करोगे। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, ये बुद्धि है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको अपने बिजनेस में घाटा हो रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके कि आपका अपने पत्नी से झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लॉस हो गया। असली प्रॉब्लम ये है कि हमारी मृत्यु होगी, असली प्रॉब्लम यह है कि हम भी बीमार होंगे और हम भी बूढ़े होंगे, और इसका कोई हल नहीं है। इसका हल केवल एक ही है, गीता। कोई विज्ञान के पास भी नहीं है, विज्ञान भी कोशिश कर रहा है कि हमेशा के लिए अमर हो जाए, इसलिए अलग अलग मशीन बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ब्रेन पे, रोबोटिक्स कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मरे ना, मगर ऐसा कभी होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता। इतने सारे हॉस्पिटल खुल गए, क्या बीमारी रुक गई? और बढ़ती जा रही है, एड्स आ गई, HIV, हेपेटाइटिस बी आ गई, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ रही हैं आजकल, ऐसे ऐसे बुखार आ रहे हैं जिससे लोग मर रहे हैं। क्या उसका हल निकला? नहीं निकला। तो लोग सोचते हैं कि हम ब्यूटी पार्लर जाके जवान हो जाएंगे, हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर हम अपनी आंखें बंद करके ये सोच ले सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो नहीं होगी। अगर शेर आपको मारने आ रहा है, आप आंखें बंद कर लो तो ऐसा नहीं होगा कि शेर भाग जाएगा, शेर है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, ये दोष देखो इस संसार में, समझने की कोशिश करो कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे निकलने का रास्ता है, हमेशा हमेशा के लिए हम इससे निकल जाएंगे। कैसे? अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, समझेंगे कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति करेंगे, तो इस जीवन के बाद फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे, जहां से वापस कभी भी नहीं आएंगे यहां पर। इसलिए भगवान ने हमें यहां पे भेजा। भगवान ने हमें यहां पे इसलिए नहीं भेजा कि हम जॉब करें, दुकान खोलें, शादी करें, बच्चे करें, इसलिए नहीं भेजा है। ये करना गलत नहीं है, काम करना मगर गलत नहीं है, विवाह करना गलत नहीं है, शास्त्रों में है, पुत्र उत्पत्ति करना वो गलत नहीं है, मगर हम ये कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, उसमें खो मत जाओ। आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब कुछ करते हो, मगर ये कभी नहीं भूलते कि ट्रेन कहां जा रही है। तो जो जीवन का लक्ष्य भूल गया वो पागल है, प्रैक्टिकली पागल है वो। हमें तो इस संसार के लोग पागल नजर आते हैं, गीता की दृष्टि से देखोगे तो पागल है, क्योंकि रोज वही करते रहना, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होना, उससे संतुष्टि कहां मिलती है? जिसके हृदय में संतुष्टि नहीं है उसके हृदय में शांति कैसे होगी? जिसका हृदय अशांत है वो सुखी कैसे होगा? तो भगवान कह रहे कि पहले ये समझो कि जीवन का लक्ष्य इस संसार में हमेशा के लिए रहना नहीं है, ना आप रह सकते हो क्योंकि मर के दूसरे शरीर में जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इन समस्याओं से बाहर कैसे निकले? तो कृष्ण कह रहे हैं ओके, ये समझने की कोशिश करो कि भगवान कौन है। भगवान की परिभाषा है, भगवान कोई लाइट नहीं है, कोई ज्योति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ज्योति है, वो गलत है, किसी शास्त्र में नहीं दिया कि भगवान ज्योति है। भगवान कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं कि ज्योति ज्योतिषाम अपी, कि मैं सारी ज्योतियों की ज्योति हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ज्योति बन गए। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है, तो क्या वो शेर बन गया? इसका मतलब है कि वो शेर की तरह बहुत बलवान है। इसको बोलते हैं रूढ़ी वृत्ति, एक रूढ़ी वृत्ति होती है संस्कृत में। इस तरह से हम किसी भी वाक्य को समझते हैं। भगवान कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं कि मैं सारे पक्षियों में गरुड़ हूं, 11वें अध्याय में। तो क्या भगवान गरुड़ बन गए? नहीं, गरुड़ जी में शक्ति है, वो भगवान की है। सारे पशुओं में शेर हूं, तो क्या शेर बन गए कृष्णा? नहीं, शेर में जो बल है वो मैं हूं, वो मैंने दिया है। उसी प्रकार सारी ज्योतियों की ज्योति हूं मैं। कहने का मतलब है इस संसार में जो भी प्रकाश है वो कहां से आ रहा है? वो मुझसे आ रहा है। सूर्य का प्रकाश मुझसे आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश मुझसे आ रहा है। आप में जो बुद्धि है वो भगवान से आ रही है, जो बल है वो भगवान से आ रहा है। अब हमारे ऊपर है कि उस बुद्धि और बल को कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम इस बुद्धि को भगवान को समझने में लगाएंगे तो वो सार्थक है, भगवान को नहीं समझने में लगाएंगे तो वो असार्थक है। तो भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान है जन्मादस्यता अन्यवद इतरदश्च अभिज्ञ स्वराट। भगवान वो है जिनका कोई कारण नहीं है, भगवान वो है जो सबके कारणों के कारण है, भगवान वो है जिनसे सब कुछ जन्म हुआ है, सब कुछ पालन करते हैं, सबका प्रलय कर देते हैं, और वो एक है। 33 करोड़ भगवान नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो। एकले ईश्वर कृष्ण आरा सब भृत्य, एक ईश्वर है वो केवल कृष्ण है। हमारे हिंदू समाज में ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम बहुत सबको भगवान मानते हैं, गुरु को भी भगवान मान लेते। भगवान केवल एक होता है, करोड़ों भगवान नहीं होते, क्योंकि करोड़ों भगवान होंगे तो वो एक दूसरे लड़ेंगे। राजा एक होता है, प्राइम मिनिस्टर एक होता है, भगवान भी एक होता है। वो कौन है? वेद कह रहे हैं ओम अस्य महतो निश्वसितस्य विष्णु परमम पदम यदा पश्यन्ति सूर्या। भगवान है विष्णु, उन्हीं विष्णु का रूप है कृष्णा, या कृष्ण का रूप है विष्णु, एक ही बात है। उन्हीं विष्णु का रूप है राम, उन्हीं विष्णु का रूप है नरसिंह भगवान, वराहदेव, मत्स्य अवतार, पशुराम, एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग रोल कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन अलग अलग रोल करता है पिक्चरों में, उसी प्रकार भगवान भी अलग अलग रोल करते हैं। वही कृष्णा है, वही कृष्णा राम के रूप में आते हैं, पशुराम के रूप में, वही कृष्णा वराह के रूप में आते हैं। तो भगवान एक है, मगर ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा जी, ये सारे भगवान के भक्त हैं। दुर्गा जी को वैष्णो देवी बोलते हैं, बोलते हैं वैष्णवी शक्ति है, नारायणी शक्ति है। ये मार्कंडेय पुराण में आता है, दुर्गा देवी को नारायणी शक्ति बोलती है। वो वैष्णो देवी भी विष्णु के चरणों पर चिंतन करती है। वैष्णो देवी जाए उनसे पूछे, वैष्णो देवी क्या कर रही है, वो कल की अवतार का अवतार की प्रतीक्षा कर रही है वहां पर। जब कल के अवतार आएंगे तो वो उस लीला में भाग लेंगी, अपने स्वामी की सेवा करेंगे। शिव जी, मैंने पहले बताया, कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके पास माला होती है नहीं, वो राम का चिंतन करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं। कृष्ण सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम शिव जी ने बोला है, आप पढ़ेंगे तो इस तरह से हमें समझते हैं कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण खुद गीता में बोल रहे हैं, अर्जुन ने बोला परम ब्रह्म परम धामा पवित्रो परम भवान, कृष्णा आप भगवान है, आपका धाम परम है, आपसे ऊपर कुछ नहीं है। ये मुझे नारद ने, आसेतो ने, व्यास देव ने बोला, आज आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, सिंपल। और उनको प्राप्त कैसे करना है, बहुत मुश्किल नहीं है। पहली बात तो आपके मन में क्लियर होना चाहिए भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, ठीक है, हो गया। कैसे पता, गीता से। गीता क्या है, गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी तो खरीद के पढ़ लो, क्योंकि अगर आप गीता नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे ढोंगी गुरु आएंगे, आपको ठग के चले जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। तो ऐसे गुरु आ गए हैं जो कृपा करते हैं, गोलगप्पे खिलाते हैं, कृपा करते हैं, ऐसे फालतू के गुरु आ गए हैं समाज में, और लोग उनके पास जा भी रहे हैं। वो क्यों बैठे हैं, क्यों आ गए समाज में, उनकी गलती नहीं है, वो तो बुद्धिमान है, उनको पता है इस समाज में किसी ने भी अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा है, सब अपने आप को हिंदू कहते हैं, किसी को अपनी किताब पता ही नहीं गीता, इसलिए इनको लूट लो, और हम भी लूट जाते हैं। कोई गोलगप्पे और मिठाई खाने से कृपा नहीं आती, वो भ्रम है। अगर मैं भी आपके यहां पे पंडाल में, आप 100 लोग बैठे हो और मैं 100 लोगों को बोलूंगा कि मेरा आशीर्वाद लो आपका काम बन जाएगा, 5 लोगों का तो हो जाएगा नहीं, अपने आप हो नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे देखो गुरु जी की कृपा से हो गया, वो गुरु जी की कृपा से नहीं है, वो अपने आप हो गया, ठीक, वो किस्मत से होता है। तो आप भ्रमित मत होइए, बेवकूफ मत बनिए, मूर्ता है, अंधों के पीछे अंधे चलते हैं। पानी है, तो अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं, ये समाज है। बेवकूफों के पीछे बेवकूफ चल रहे हैं। अगर पूरी दुनिया गड्ढे में जा रही है तो हमें गड्ढे में जाने की जरूरत नहीं है, हमें गीता पढ़नी चाहिए। अगर सब इस समाज में अपना ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ जो है वो गीता है, ये समझ लीजिए, अगर गीता पढ़ लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको भ्रमित कर दे। ये सारी जो प्रॉब्लम है ढोंगी गुरुओं की, वो सब खत्म हो जाएगी। कोई बोल ही नहीं सकता कुछ, अगर आपको पता होगा आप उससे प्रश्न पूछ लोगे, कहां से बोल रहे हो भाई, क्या अनाशन आप बोल रहे हो। तो पहले ठग ही नहीं आते, पहले ठगने वाले आते हैं, पहले ठगे जाने वाले आते हैं। अगर आपको नहीं पता खोटा सिक्का क्या है तो ठगे जाओगे, और क्या होगा, फिर खोटा सिक्का चलाने वाले खोटा सिक्का बनाकर लूटेंगे आपको, ऐसे ही होता है। आप लोग सब दुकानदार, यहां पर दुकानदार लोग बैठे हैं, अगर ग्राहक को समझ ही नहीं है जो चीज खरीद रहा है तो दुकानदार लूट लेगा उसको, अगर उसको समझ है तो दुकानदार कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार खराबी गुरुओं में नहीं है, वो गलत है तो हम भी गलत हैं, हम आलसी हैं। क्यों नहीं गीता पढ़ सकते, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, कितना समय लगेगा, रोज एक श्लोक उठ के पढ़िए, कोई ज्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट दीजिए बस, सुबह उठ के एक श्लोक पढ़िए इस गीता से, ये गीता ले लीजिएगा, इसमें व्याख्या है, तो आप व्याख्या पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, श्लोक पढ़िए, हर शब्द का संस्कृत शब्द का एक एक मतलब लिखा है इसमें। क्योंकि कभी कभी लोग व्याख्या भी गलत कर देते हैं हिंदी, संस्कृत की हिंदी। 600 गीताएं हैं समाज में, पता नहीं लोगों ने क्या क्या अपने मन से लिखा है। वल्लभ भाई पटेल जी ने गीता लिखी है, बाहर का क्रिकेटर है, उसने गीता लिखी है, उस पर व्याख्या लिखी गीता, उसने अनुवाद किया गीता पे, तो कैसे पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है? तो इस गीता में यथारूप में संस्कृत के हर शब्द का मतलब दिया है, आप जाके देखिए कि जिससे चीटिंग ना हो, तो साथ साथ आपको संस्कृत भी आ जाएगी। तो इसीलिए भगवान केवल कृष्णा है। उनको प्राप्त कैसे करना है? उनको प्राप्त करने का तरीका है गीता में दिया है, उनको प्राप्त करने का तरीका है सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा पूजा पंडित इनके चक्रों में मत पढ़ो, गीता पढ़ो। कृष्णा कह रहे बहुत आसान है, तेषां सतते उक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करो, मेरा नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरी गीता पढ़ो मेरा नाम लो, बस ये करना है। तो कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको छुपाना है, कहीं गुरु ऐसा मंत्र देते हैं देखो किसी को बताना मत, ये मंत्र जप करो, ये गीता में कहीं नहीं है ऐसा कुछ मंत्र। ये सब चीजें होती है, वैदिक मंत्र होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते हैं, मगर हरे कृष्णा मंत्र ये केवल भगवान का नाम है, भगवान के अनेकों नाम है, गोविंद माधव गोपी चंद वल्लभ कृष्ण राम, आप कोई भी नाम उच्चारण कर सकते हैं, बहुत ही सुगम है, एक बच्चा भी कर सकता है। और भगवान की प्राप्ति नाचते हुए प्रसाद लेते हुए हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुबह उठ के आप सबसे पहले नहाओ या ना नहाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, गीता पढ़ने में कोई नियम नहीं है। लोग सोचते हैं गीता पढ़ेंगे पहले नहाएंगे फिर पूजा करेंगे, गीता की पूजा मत करो, गीता को पढ़ लो वही पूजा है, पूजा करने के चक्कर में नहीं पढ़ना वो तो बेवकूफी है, पूजा भी करो अगर पढ़ो भी तो बहुत अच्छा है। सो गीता पढ़ने में कोई नियम नहीं है, तो सुबह उठ के एक श्लोक पढ़ो गीता का, भगवान का नाम लो माला पे, माला पे लेना जरूरी है, शास्त्रों में लिखा है माला पे लेना है, मन की माला मत करो, अगर मन में नाम लेना चाहते हो तो मन में खाना भी खा लो, पेट नहीं भरेगा उससे। सो माला पे लेना चाहिए, ऋग्वेद में माला की महत्वपूर्णता बताई है कि माला पे क्यों करना चाहिए, उसका विज्ञान है पीछे, माला पे करने से मन ज्यादा लगता है भगवान में, क्योंकि यहाँ पे धनंजय नाड़ी होती है, जब उससे माला रखते हैं तो मन कॉन्सेंट्रेट होता है भगवान पे, फोकस होता है, इसलिए माला पे करते हैं हम। कुछ नियम पालन करते हैं, नियम पालन करना जरूरी है, बिना नियमों के कुछ भी करने में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हम दुकान भी नियम से जाते हैं, रोज जाते हैं, उसी प्रकार रोज माला पे कराते हैं, ये भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, जो आप सुन रहे हो जो नाम ले रहे हो भक्ति है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं से शुरुआत है भक्ति की, ये करना है। आप पढ़ सको वेद नहीं पढ़ सको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने गीता में निष्कर्ष दे दिया। और ये करने से क्या होगा, एक दिन आप भगवान से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे कर सकते हो, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी हृदय में। अभी भगवान की पूजा कर रहे हैं हम मगर भगवान से प्रेम नहीं करते, बहुत फर्क है दोनों में, पूजा और प्रेम में। पूजा करने से भगवान को हम देखते हैं, नहीं भगवान को देख रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं, मगर प्रेम से भगवान वश में आ जाते हैं, भगवान अपने हो जाते हैं। और जब हम भगवान के अपने हो जाएंगे तो भगवान अपने धाम हमें हमेशा हमेशा के लिए बुला लेंगे, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, हम यही तो करने आए हैं यहां पर। इस संसार में हम इसलिए आए हैं कि अपने आप को शुद्ध करके भगवान के पास चले जाएं, और वहां पे हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण के साथ परम आनंदित हो सके, अमर हो जाएंगे हम, न जन्म न मृत्यु न बुढ़ापा न बीमारी। क्रीड़न जक्षण, ये छांडिको उपनिषद में आता है, वहां भगवान का खेलेंगे, रोज उत्सव होगा और केवल आनंद होगा, कोई समस्या नहीं। कौन कौन नहीं चाहता ऐसा जीवन, भगवान कह रहे हैं बहुत सुलभ है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। सो हमारी प्रार्थना आपसे यही है कि कृपा करके अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए और दूसरों को भी बताइए ये गीता का ज्ञान। अगर नहीं बता सकते तो गीता खरीद के उसको गिफ्ट करो, दे दो, हो सकता है वो समझ जाए। जरूरी नहीं है कि हम नहीं समझ पाए तो कोई नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जीवन गीता चलो, गीता पढ़ो, गीता खा जाओ। अगर सोते वक्त भी आपको उठा के पूछूं कि गीता का 15वां अध्याय का 15वां श्लोक कौन सा, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो हो सकता है भूल जाओ, मगर गीता मत भूलना कभी, क्योंकि अगर आप भगवान की वाणी भूल गए तो इस संसार में खो जाओगे हमेशा के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे, फिर से प्रॉब्लम, फिर से डाल्टनगंज में पैदा होना पड़ेगा, फिर से दुकान होगी, फिर से समस्याएं होंगी। ये चाहते हो तो ये कर लो, मगर कृष्णा आपको इसका सिंपल सिंपल सॉल्यूशन दे रहे हैं कि छोड़ो ये सब, मेरे पास आ जाओ। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध ये है कि गीता लीजिए। इसके साथ वो अभिषेक दो किताबें कहाँ हैं? हाँ मतलब और किताबें कहाँ हैं? तो इस गीता के साथ हम लोग वहाँ दो किताबें फ्री भी दे रहे हैं, क्योंकि इस महीने गीता बोली गई थी इसलिए हम इसका दो किताबें फ्री भी दे रहे हैं। तो जो ये गीता खरीदेगा उसके दो किताबें फ्री ले सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद मुझसे साइन भी करा सकते हैं, मैं उस पर साइन भी कर दूंगा कि आपको याददाश्त रहे कि आपने इस प्रोग्राम में गीता खरीदी थी, प्रेरणा मिलती रहे कि एक किसी साधु से गीता ली थी हमने, तो उसका पढ़ना हमारा कर्तव्य है। तो ये दो किताबें, या एक ये किताबें मैंने लिखी है, गुरु कौन, आजकल समाज में गुरु का विषय चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, तो गुरु कौन है, सही क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, वो सब इसमें लिखा है। और एक किताब है कृष्ण की ओर, तो आप दो किताबें कोई भी ले सकते हो वहाँ से, आपकी मर्जी है। तो इस गीता के दो किताबें फ्री हैं। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ खरीद लीजिए यहाँ से किताब, क्योंकि आप किताब खरीदेंगे ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान का ज्ञान तो अमूल्य है, अमूल्य है, सो कोई मूल्य नहीं है, मगर एक बार आपने किताबें पढ़ना शुरू कर दी और समझ आ गई तब आप सोचेंगे, उस दिन जिस दिन समझ आएगी उस दिन सोचेंगे आप कि बहुत अच्छा हुआ मैंने किताब खरीद ली थी, वो दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। सो हरे कृष्णा, हमारा यही संदेश है, भगवान और विज्ञान, हम आपको ये बताने आए थे कि संसार का विज्ञान अधूरा है, वैज्ञानिकों ने हमें लाइट दी, सेलफोन दिया है, मोटरसाइकिल दिया है, गाड़ी दिया है, घर दिया है, बंगलो दिया है, मगर एक चीज नहीं दे पाए, सुख और शांति। मगर गीता के विज्ञान ने हमें वो चीज दी है जो कोई नहीं दे सकता, वह सुख और शांति। और इस जन्म के, इस मनुष्य जीवन के बाद भी हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या अच्छा है, भगवान का विज्ञान या संसार का विज्ञान? भगवान का विज्ञान ऑफ कोर्स। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय हो। कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना है किसी को, कुछ पूछना है, तो अन्यथा हम यहाँ पे विराम करेंगे। क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है तो अच्छा है, मैं 8 बजे खत्म कर दिया मैंने। या कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, अगर कोई है तो। ओके, हमारी कीर्तन पार्टी है। ठीक है, सो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ, तो जिसको यहां तो मैंने आपको बहुत ही एक इंट्रोडक्शन दी है, ऊपर ऊपर से बताया कि गीता क्या है, भगवान कौन है। हम 3 दिन और प्रोग्राम कर रहे हैं हरे कृष्णा निवास पुलिस लाइन रोड पे, वहां पर 3 दिन और प्रोग्राम है, वहां पे भी पंडाल लगा है, आप सब आमंत्रित हैं, जिसको और जानना है वहां पे आइए। वहां पे मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा कि गीता में क्या है, गीता के 18 अध्याय 700 श्लोकों में क्या ज्ञान है। गीता में फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, मनोविज्ञान है, आयुर्वेद है, सब कुछ है गीता में। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे है, और भगवान का विज्ञान भी है, कंप्लीट बुक है गीता। गीता से ऊपर कोई शास्त्र है ही नहीं, तो उस पर हम 3 दिन चर्चा करेंगे थोड़े और विस्तार से। तो जिसको जिसको और जानना है वहां पे आइए, मैं भी होऊंगा, मुझसे कोई पूछना चाहते हैं तो वहां पे पूछ सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों को संग शंका को दूर करने का। सो अब हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद सबके लिए प्रसाद है।